मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 26 मई 2017 है और आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सबका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। अब कुछ दिनों तक का जो डेली ऑडियो लेक्चर होगा वो न्यूज एनालिसिस पर बेस्ड नहीं होगा। जो न्यूज एनालिसिस पर बेस्ड जो डेली ऑडियो लेक्चर होता था वह कुछ दिनों के लिए संभव नहीं होगा। कितनी दिनों के लिए यह आपको आने वाला समय बता देगा। यह एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी भी है। स्पेशल अपॉर्चुनिटी इस मायने में फ्रेंड्स कि चूंकि अब हमारे पास किसी तरह के किसी भी न्यूज की बाध्यता नहीं है कि हमको इसी पर बात करनी है, तो मेरे लिए अब ये फ्रीडम मुझे मिल गई कि मैं कुछ भी आप सब कोई भी टॉपिक चुन करके आप लोगों के लिए कुछ भी किसी भी इश्यू पर बात करूं। यानी कि अब हम एक डेली ऑडियो लेक्चर में कई इश्यूज पर बात नहीं करेंगे, छुटपुट छुटपुट तरीके से भी कई उन पर बात नहीं करेंगे, या एक ही पर हम छुटपुट बात नहीं करेंगे, बल्कि अब कोशिश ये होगी कि हम डेली ऑडियो लेक्चर में एक दो इश्यू लें और उन पर कंप्लीट तरीके से यथासंभव जितना भी पॉसिबल हो सकता है बात करने की कोशिश करें। पहली बात यानी कि हम एक इशू दो इशू उठाएंगे और उस पर फिर बातचीत करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स कि जो इशू उठाए जाएंगे डेफिनेटली वो चूंकि डेली ऑडियो लेक्चर का जो बेस है वो करेंट अफेयर है, समसामयिक घटनाएं हैं, तो निश्चित तौर पर जो मैं विषय भी उठाऊंगा वह आप समझ लीजिए कि वो सारे के सारे विषय किसी न किसी मायने में करेंट अफेयर्स से जुड़े हुए होंगे, और केवल करेंट अफेयर्स से जुड़े हुए नहीं होंगे बल्कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मैं एग्जामिनेशन की बात कह रहा हूं तो उसमें आप प्री को भी शामिल कर सकते हैं, मेंस को भी शामिल कर सकते हैं और यहां तक कि इंटरव्यू को भी शामिल कर सकते हैं। इन तीनों में ये आपकी तैयारी करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो इस रूप में आप कह लीजिए कि एक स्पेशल ओकेजन भी है जो हम लोगों को इस रूप में मौका मिल गया है कि हम लोग अब कुछ ऐसे मुद्दों पर बात कर सकें। तो फ्रेंड्स अब आइए अब शुरू करते हैं किसी टॉपिक पर और उस पर मैं आपको एक व्यू देने की कोशिश करूंगा, परिचयात्मक भी समीक्षात्मक भी, ताकि कम से कम एक टॉपिक के बारे में तो आपकी अच्छी जानकारी हो ही जाए। मित्रों मैं शुरुआत करता हूं अपना एक वायदे को निभाने से, और आपको ध्यान होगा कि मैंने रामानुजाचार्य जी के बारे में आपसे कहा था कि इन पर हम लोग बातचीत करेंगे आपको, क्योंकि इनकी 1000वीं जयंती हमारा देश मना रहा है और उस पर डाक टिकट भी भारत सरकार ने जारी किया है, और चूंकि ये भक्ति काल के प्रणेता रहे हैं, मतलब ये माना जाता है कि भक्ति काल आंदोलन के जो बीज पड़े हमारे देश में वो रामानुजाचार्य जी से पड़े हैं, तो इस पर बहुत संभावना है पूछे जाने की, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका एक जो छोटा सा पार्ट है मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि मैं इससे पहले आप लोगों को बता चुका हूं, जिसमें मैंने इनका जो विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत था वह स्पष्ट किया था कि विशिष्टाद्वैतवाद का क्या मतलब है, और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी कि हमारे यहां जो शंकराचार्य हुए वो भी साउथ के थे, केरल के थे, शंकराचार्य जी ने जो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैतवाद किस मायने में शंकराचार्य के अद्वैतवाद से भिन्न था यह मैं बता चुका हूं, इसलिए मुझे इस बात के लिए माफ कीजिएगा कि मैं उसे यहां दोहरा नहीं रहा हूं, और यदि आपने नहीं सुना हो तो प्लीज इस तथ्य को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप इस तथ्य को अच्छे से नहीं समझेंगे मानकर चलिए कि रामानुजाचार्य पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बहुत सटीक उत्तर आप नहीं दे सकेंगे। मैं दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात तो नहीं कहता है, लेकिन सिविल सर्विस जो आईएएस का एग्जाम है उसके बारे में मैं जरूर कह सकता हूं कि आपकी कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी, क्योंकि रामानुजाचार्य जी को समझने के लिए उनके विशिष्टाद्वैतवाद को समझना निहायत ही जरूरी है। फ्रेंड्स उनका एक जो सेकेंड पार्ट है जिसका मैंने आप सबसे वायदा किया था वो था कि सामाजिक आंदोलन कैसे रामानुजाचार्य जी का यह सिद्धांत बना, उसी में मैं कुछ तथ्य आपको और बताना चाहूंगा, और फिर रामानुजाचार्य जी के बारे में एक छोटा नोट या एक परिचयात्मक जानकारी जो होनी चाहिए वो कंप्लीट हो जाएगी। मित्रों रामानुजाचार्य जी ने आपने देखा कि अद्वैतवाद का विरोध करते हुए साफ कहा कि नहीं, ईश्वर और जो जीव है वो बिल्कुल एक नहीं है, दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं है। ईश्वर तो बहुत ही विशुद्ध चेतना है, वो तो बहुत ही बड़ा है और जीव तो उसका अंश है, तो एक इतने बड़े का मुकाबला इतने छोटे से अंश से कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, ये संसार माया नहीं है, ये संसार तो यथार्थ है, जिसे हम देख रहे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो माया कैसे हो सकती है। इस तरीके से उन्होंने उसका विरोध किया। फिर जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, जिसे बाद में भक्ति काल में ये कहिए कि टेकअप करके और बहुत आगे तक बढ़ाया गया, वो ये कहा गया कि ये जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मनुष्य हैं, ये सभी समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। ईश्वर सगुण है, उसका रूप होता है, उसे बकायदे महसूस किया जा सकता है, उसकी भक्ति की जा सकती है, और ईश्वर की ये जो भक्ति है, जो आराधना है, ये किसी के लिए प्रतिबंधित नहीं है। उसकी दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में सभी भक्त समान हैं। जाति प्रथा में दोस्तों, चूंकि उस समय बहुत अधिक प्रबल थी, हम 10वीं-11वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 10वीं-11वीं शताब्दी तक आते आते जाति प्रथा तो बहुत ही, मतलब भारतीय समाज का सबसे जो एक कलंकित पक्ष रहा है, जिसकी आप कह लीजिए कि जिसका संकट आज तक हमारा समाज भुगत रहा है और ऐतिहासिक काल तक भुगतता रहा है, चला आ रहा है, लेकिन आज हालांकि ठीक है उसके बंधन ढीले जरूर पड़ गए हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में तो आज भी मौजूद है, वह है जाति प्रथा। एक तो ऊंच नीच, जाति प्रथा में भी ऊंच नीच हो गई और उसमें भी एक वर्ग को ऐसा बना दिया गया जिसको हम अस्पृश्य कहने लगे, जिसको छूना तक पाप है। सोचिए भला, रामानुजाचार्य जी ने इसके खिलाफ अपनी बात कही, उन्होंने कहा कि नहीं, ईश्वर सभी को समान मानते हैं, उनकी दृष्टि में सभी समान हैं, इस प्रकार चाहे वो ऊंची जाति वाले हों या नीची जाति वाली हों, सभी में ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, मतलब कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसमें समान रूप में ब्रह्म मौजूद है, ईश्वर मौजूद है। दोस्तों, ये आसान काम नहीं था उस समय के समाज के लिए पचा पाना। रामानुजाचार्य जी का अपना आश्रम था, उस आश्रम में उन्होंने लागू कर दिया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। आप देखिए कि रामानुजाचार्य जी ये बात कह रहे हैं, आश्रम के प्रमुख ये बात कह रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने क्या व्यवस्था की, मतलब वहां उन्हें भी समझौता करना पड़ा। ठीक है, व्यावहारिक स्तर पर उन्हें समझौता करना पड़ा, लेकिन इसकी बाद में एक बहुत बड़े रूप में परिणति हुई, मतलब उनका जो समझौता था वो व्यर्थ नहीं गया। तो ये जो उन्होंने जो समझौता किया था, मैं जानबूझकर आपको बता रहा हूं, तो मैं अपनी बात तो इतना कह के खत्म कर सकता था, मैं बता इसलिए रहा हूं कि इस तरह के जब समझौते होते हैं या जो कहानी किस्से नुमा जो बातें होती है ना, वो हमारे दिमाग में ज्यादा बैठ जाती हैं और वो फिर हमें सूत्र दे देती हैं पकड़ने का, तो फिर हम भूलते नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, कि अब ऊंची जाति नीची जाति की प्रथा थी, ऊंची जाति के लोगों ने नीची जाति के साथ बैठकर भोजन करना अस्वीकार कर दिया, तो रामानुजाचार्य जी ने स्वीकार किया कि ठीक है चलो, खाना तो तुम लोग अलग अलग बैठकर खा लेना, ऊंची जाति वाले अपने को ऊंचा समझते हो तो अलग बैठ करके खाना खा लो, नीची जाति वाले अलग बैठ करके खाना खा लेंगे, लेकिन एक बात उन्होंने कही और उस पर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया और अंततः लोगों ने किया, वो ये कि भजन और प्रार्थना की जब बात आएगी तो सब एक साथ मिलकर करेंगे, मतलब ईश्वर की जो आराधना होगी, जो भक्ति होगी, वो अलग अलग नहीं होगी, वो सब मिलकर करेंगे। दोस्तों, ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, उस समय तो बहुत बड़ी बात थी, आज आपको शायद उतनी बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन इसने जो बीज बोए समाज में, वो 200 साल के बाद, करीब 200, 300, 400 साल के बाद इतने बड़े वट वृक्ष के रूप में तैयार हो गया कि पूरे के पूरे भारतीय समाज में एक जबरदस्त किस्म का तूफान खड़ा हो गया, आंदोलन खड़ा हो गया। और वो जो टॉर्च बियरर बने, इसके बाद जो हमारे हमें जो दिखाई देते हैं वो हैं रामानंद। रामानंद आए, नाम आपने सुना होगा, रामानंद एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बीज तो नो डाउट रामानुजाचार्य जी ने डाले थे, लेकिन उस बीज को सही मायने में लागू करना, मतलब उसके जो फल आ गए और उस फल का आनंद लिया जा रहा है और समाज में उसकी शाखाएं फैल गई हैं, बीज इतना बड़ा हो गया, वो रामानंद जी ने किया। रामानंद अद्भुत व्यक्ति, जबरदस्त व्यक्ति। और मित्रों, एक तरीके से भक्ति काल की जब हम बात करते हैं तो सच मायने में वो एक रामानंद से ही शुरुआत उसकी होती है, क्योंकि रामानुजाचार्य और फिर रामानंद ने जो वेदांत का सिद्धांत दिया और फिर जो सुधारवादी आंदोलन खड़ा किया, तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि रामानंद धर्म में सुधार कर रहे थे या भक्ति आंदोलन का प्रचार कर रहे थे या वो कहीं कुछ और एक सुधारवादी आंदोलन लेकर के चल रहे थे, वो कोई क्रांति पैदा कर रहे थे, क्या कर रहे थे। क्योंकि वो जो काम कर रहे थे वो कई क्षेत्रों में हमें दिखाई देता है। नो डाउट वो लेकर के तो चलते हैं धर्म को ही, जब वो कहते हैं कि नहीं ईश्वर सबके लिए है, समान है, जो भक्ति है उसके लिए किसी पुरोहित की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति भक्ति भक्ति कर सकता है, तो सीधी सी बात है कि फिर वो धर्म की बात करते हैं। लेकिन जब वो जाति प्रथा के खिलाफ, मतलब बहुत ही जबरदस्त उसका खंडन करते हैं, तब फिर ऐसा लगने लगता है कि नहीं ये तो समाज सुधार की बात कर रहे हैं। लोगों के बीच जब जाते हैं और अपनी कविताएं रचते हैं और जब अपने शिष्य बनाते हैं और उन शिष्यों को जब समाज में भेजते हैं और वो शिष्य जब उस काम को आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक क्रांति खड़ी कर रहे थे, चाहे वो सांस्कृतिक क्रांति ही क्यों ना हो। और ये भक्ति काल की एक बहुत बड़ी ताकत है, उसकी बहुत बड़ी विशिष्टता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है फ्रेंड्स कि ये सारे के सारे जो आंदोलन, जो भक्ति आंदोलन जो हम कहते हैं, ये सन 1400-1500 से शुरू हुआ, 1600-1700 तक काफी मजबूत हो गया, और बाद में चलकर आप इतिहास में पढ़ेंगे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, पढ़ते हैं ना अंग्रेजों के आने के बाद से, सती प्रथा के खिलाफ कानून बने, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया, बहुविवाह को रोका गया, ये सारे जो आप सुधार पढ़ते हैं सोशल रिफॉर्म्स थे, है ना, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि सच पूछे तो उन परंपराओं को जिनको हमने धर्म मान लिया था उनका इन्होंने खंडन किया, उनमें सुधार किया, कहीं लोगों को समझा करके, चेतना जागृत करके, और कहीं सच पूछिए तो सीधे सीधे कानून बना करके, सती प्रथा के खिलाफ कानून ही बना दिया गया, ये सब किया गया। कभी कभी लगता है कि क्या अगर भक्ति आंदोलन नहीं आया होता तो यह संभव था, चाहे वो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया, हमारे दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की और दूसरे समाज आए, तो इनकी जो पूरी की पूरी पृष्ठभूमि थी वो हमें लगता है, और कोई गलत नहीं है इसमें, कोई ज्यादा संदेह भी नहीं है कि वो भक्ति आंदोलन ने उसकी नींव रखती। और रामानंद जो थे वो उसके एक अद्भुत, आप कह लीजिए कि बीज रोपण करने वाले लोगों में थे। कुछ नाम आपने भक्ति काल में सुने हैं जिन्होंने जाति प्रथा का जबरदस्त रूप से खंडन किया है। रैदास का नाम आपने सुना है, जो जाति से अगर हम बात करें तो रैदास बेसिकली अछूत जाट किसान थे, अछूत जाट अस्पृश्य थे, सोचिए जात, और वो जूता बनाने का काम करते थे, सेना नाई थे, मतलब इनके प्रोफेशन देखिए और जाति देखिए, क्योंकि उस समय जाति का निर्धारण प्रोफेशन के आधार पर होता था। कबीर आपको मालूम ही है कि वो तो जुलाहा ही थे, दादू एक नीची जाति के बुनकर थे, नानक एक मामूली व्यापारी के पुत्र थे, जो मराठी के कवि हुए हैं नामदेव वो दर्जी थे, तुकाराम नीची जाति के एक छोटे से व्यापारी थे, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो एकदम गरीब परिवार में जन्मे हुए थे, आंध्र प्रदेश के कवि वेमन्ना एक बिल्कुल अनपढ़ किसान थे। तो ये जो लोग थे जो भक्ति आंदोलन के पिलर्स हैं, देखिए इनकी जातियां देखिए और फिर प्रोफेशन देखिए, मतलब ये सब काम भी करते रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि ये कोई आश्रम इन लोगों ने खोल लिया और वहां बस उपदेश दे रहे हैं, नो, आजीविका भी कमा रहे हैं और भक्त भी बने हुए। तो धर्म का बिल्कुल एक नया स्वरूप हिंदुस्तानी चेतना में पैदा हुआ कि कोई भी प्रोफेशन धर्म के आड़े नहीं आता है, और काम करते ही हम अपने धर्म का निर्वाह करेंगे, हम दूसरी की कमाई पर नहीं जिएंगे, हमारा जो जीवन यापन होगा वो हमारी अपनी ही कमाई पर होगा। तो यहां जो विचारक हैं, सबको हम विचारक भी मानते हैं, इनको हम कवि भी मानते हैं, इनका एक यह स्वरूप दिखाई देता है कि न तो ये लीडर थे, नेता नहीं थे, और न फालतू की बकवास करने वाले केवल फिलोसोफर थे कि जो केवल बात कर रहे हैं, और न ही साहब ये कोई समाज सुधारक थे। सीधी सी बात है कि ये लोग जनता के बीच में एक्टिव रहते थे, अपना काम करते थे, कठिन मेहनत से कमाई करके अपनी जीविका का पालन करते थे और अपनी बात कविताओं में लोगों के सामने रखते थे और अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे। लोग सुनते थे, अपने आचरण में लाते थे और धीरे धीरे समाज में इससे चेतना की में एक छटपटाहट जो है वो शुरू हुई। तो मित्रों, कुल मिलाकर यह कि अगर रामानुजाचार्य जी ने वह बात उस समय सन 1000 के आसपास नहीं कही होती तो उसके लगभग 300 साल के बाद जो भक्ति आंदोलन हमें एक बड़े विशाल रूप में दिखाई देता है वो अवेलेबल नहीं हो पाता। तो मित्रों, मैं अपनी ओर से मैं इतनी ही बातें कहना चाहूंगा। आपको और अभिरुचि होनी चाहिए जानने के लिए तो भक्ति आंदोलन पर तो किताबों में काफी कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा और मैं बल्कि सजेस्ट भी करूंगा कि आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए क्योंकि ये भारत का बहुत जबरदस्त एक रिनेशा पीरियड है, एक पुनर्जागरण का काल है और भारतीय चेतना पर आज भी इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।